हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका से कहने लगा था, तुम जानती हो, अगर तुम सिर्फ एक बार अमन के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लेती हो, तो अमन के अंदर का तिलस्मी पत्थर हमेशा हमेशा के लिए उसके जिस्म से बाहर निकल जाएगा और वो सीधा तुमसे जा मिलेगा। क्योंकि सफ़ेद जिन्नातों को किसी और गैर औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और अमन ये सारी चीज़ ऑलरेडी पता है, क्योंकि अमन अपने पिता से कितने ही वर्षों तक दूर रहा था। तो अमन ये गलती जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए हमें उससे वो गलती करवानी ही होगी। वेल, अमित जल्दी ही पूरा प्लान सोचने लगा था। क्योंकि अमन ने काम जिस तरह से अमन के पिताजी ने अपने परिवार से पूरे 15 साल दूर रहकर चुकाई है, और पूरे 15 सालों के बाद अमन के पिताजी लौट कर आए हैं। क्या तुम ये जानती हो कि तुम जानती हो अब अमन के पिताजी लौट आए हैं क्या? आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। जैसे ही मालिका ने यह सुना, वो हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, आपको कैसे पता कि अमन के पिताजी लौट आए हैं? और आखिरकार ये हुआ कैसे? अमन के पिताजी इस तरह से कैसे लौट कर आ सकते हैं? तभी काली शक्तियों का मालिक अमित मुस्कुराते हुए कहने लगे थे, क्योंकि काली शक्तियों के महागुरु ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि राक्षसी हिडिब्बा को अमन ने हरा दिया है और उसने अपने पिता को रिहा करवा लिया है। अब तुम देखो मैं किस तरह से बाप बेटों की जोड़ी को अलग करता हूँ, साथ ही साथ अमन से वो तिलस्मी पत्थर हासिल करता हूँ। इसके लिए तुम्हें कमर कसनी होगी और मेरा साथ देना होगा। अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अब ठीक 3 से 4 दिनों के बाद अमन अपना ऑफिस ज्वाइन करेगा। तब हमें कुछ ना कुछ करके उनकी नज़रों में आना होगा और उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि हम उसके वेल विशेस हैं और हमसे ज़्यादा वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हें अब तारा से नज़दीकियाँ बढ़ानी होगी, उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। जितना तुम तारा से नज़दीक रहोगी या उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी, तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है धीरे धीरे तारा तुम्हारी बातों में आने लगेगी और तुम उसके एक अच्छे दोस्त बन जाओगी। उसके बाद उन्हें धोखा देना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिनके हम बहुत ही ज्यादा करीब हो जाते हैं, उन्हें धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। तुम समझ रही हो मेरी बात? तभी मालिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। वो कहने लगी थी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन गुजरने का इंतजार कर रही हूँ, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मल्लिका ने अपने ही धुन में कहा था। और तभी काली शक्तियों का मालिक अमित उसे देखे गया था। आज काफी दिनों के बाद काली शक्तियों का मालिक अमित रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि एक तो उसकी जिंदगी से वो डायन दूर हो चुकी थी और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर था। अमित इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से अनजान था कि इस मकसद है में उसके रास्ते में कौन कौन से कांटे आने वाले थे जिनका मुकाबला शायद ही वो कर पाए। बल काली शक्तियों का मालिक अमित आज डायन से आज़ाद अपने इस आज़ादी के दिन को बिल्कुल अच्छी तरह से मना लेना चाहता था। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि मल्लिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि काली शक्तियों का मालिक अमित उसे छुए या उसके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता बनाए। लेकिन काली शक्तियों का मालिक ये बात अभी अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने मल्लिका के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया तो उसके सारी की सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो सकती है और शायद ही फिर उसे वापस उसकी शक्तियां मिल पाए। लेकिन उसने मल्लिका के साथ शारीरिक रिश्ता ना बनाकर उसे दूसरे ही तरीके से परेशान करना जारी रखा था और मल्लिका के जिस्म के साथ छेड़खानी करके वो उसके जिस्म के साथ कितनी ही देर तक खेलता रहा था, क्योंकि अगले दिन से वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन आज वो पूरी तरह से अपने मन को शांत करना चाहता था, इसलिए उसने मल्लिका के जिस्म का सहारा लिया था। और मल्लिका अमित के इस तरह के बर्ताव से अंदर ही अंदर छिड़कर रह गई थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकती थी, इसीलिए वो बेबसी लेटी रही थी और अमित की हरकतों को देखते रही थी। बेबस मल्लिका के कुछ आंसू निकलकर उसकी आंखों से बह गए थे, लेकिन उसने बड़ी ही बेदर्दी से अपने उन आंसुओं को पूछ दिया था और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अमन को अभी तक होश नहीं आया था। तारा उसी के पास बैठी हुई थी और उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी और उसे इस बात का पूरा यकीन था कि जब तक अमन को होश आएगा तब तक पिशाचनियों के जंगल में वो लौटा फेंक कर करिश्मा जी और अमरेंद्र जी भी लौट आएंगे, क्योंकि उन्हें वो लौटा पिशानियों के जंगल में ही फेंकना था। क्योंकि अगर उन्होंने उस लौटे को कहीं बाहर खुला हुआ छोड़ दिया तो एक बार फिर वो पिशाच की आत्मा अमन पर कब्जा कर सकती थी, जो कि अमन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। तो यही सोचते हुए तारा उनके आने का इंतजार करने लगी थी और साथ ही साथ वो अब अमन के होश में आने का भी इंतजार करने लगी थी। लेकिन उसका बच्चा उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसका बच्चा उसका साथ दे रहा हो। तारा उसे हर हाल में अपने आप को मजबूत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि धीरे धीरे तारा का पेट अब बढ़ने लगा था। तारा को एहसास होने लगा था कि उसका बच्चा हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में उसके साथ है। अंदर ही अंदर तारा बेड पर लेटे हुए अमन को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। तभी तारा सोचने लगी थी कि क्या होगा जब वो धरती लोक से परी लोक जाएगी, क्या वो अमन के बिना रह पाएगी और क्या अमर उसके बच्चे को ले जाने देगा। कहीं ना कहीं तारा के दिलो दिमाग में जैसे ही ये सवाल आते थे, वैसे ही इसका दिलो दिमाग एकदम से सुन हो चुका था। करिश्मा जी को ये तो पता चल गया था कि तारा एक परी थी, लेकिन उसका वहां आने का क्या मकसद था और असल में वो क्या करने वहां आई थी, ये बात का करिश्मा जी को भी दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। क्योंकि जंगल में जिस सिचुएशन के तहत करिश्मा जी को ये पता चला था कि तारा एक परी थी, उस वक्त एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं था कि आखिरकार वो धरती पर क्या लेने के लिए आई थी। तब तारा कहीं न कहीं सोचने लगी थी कि अगर करिश्मा जी को ये पता चला कि तारा अपने होने वाले बच्चे को परीलोक लेकर जाना चाहती है, तो क्या करिश्मा जी उसे जाने देगी। क्योंकि जहां तक तारा परी को पता था, करिश्मा जी उस बच्चे का आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वेल, तारा भी अपनी सोच में गुम ही थी कि तभी अचानक से उसे अपने कमरे में किसी और के होने का एहसास होने लगा था। तारा ने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा था, लेकिन जैसे ही उसे कमरे में किसी के होने की खुशबू तारा की नाक में टकराई, अचानक से तारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था, रानी माँ, अगर आप यहाँ हैं तो आप मेरे सामने आ सकती हैं। जैसे ही तारा ने ये कहा, अचानक से झिलमिलती हुई रानी माँ रंग बिरंगी रोशनी से निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही तारा ने अपनी माँ को देखा, उसने तुरंत दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया था और तारा की आंखों में आंसू आ गए थे और कहने लगी थी, रानी माँ, आप नहीं जानती आपकी यहाँ देखकर मैं कितने ज्यादा खुश हूँ। मुझे आपकी रह रहकर बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आपके बिना रहना मेरे लिए कितना बड़ा दर्द से भरा है। तभी रानी माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, मेरी बच्ची, जिस वक्त उस रक्षास का अंश पृथ्वीलोक से परीलोक में आया, मैं सभी समझ गई थी कि मेरी बेटी ने एक जीत हासिल कर ली है।
चाहे वो तुम्हारी छोटी ही सी ही जीत थी, लेकिन जीत तो थी ना बेटी। तुमने उस राक्षस के अंश को हराकर ये बात साबित कर दी है कि तुम उस राक्षस को भी जरूर हराओगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यहाँ कुछ जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो तो धीरे धीरे तुम्हारा समय खत्म होता जा रहा है और अब तुम्हें परीलोक आने की तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि वो राक्षस अगर मूर्छित अवस्था में अपना एक अंश पृथ्वी पर तुमसे लड़ने के लिए, तुम्हें लेने के लिए भेज सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और आज मेरा यहाँ आने का एक जरूरी कारण है जो मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ। देखो तारा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त अमन की हालत कुछ ठीक नहीं है और तुम उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन बेटा, तुम्हें ये बात बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 7 दिनों से लगातार उस राक्षस के अंदर से कुछ अजीब से काले रंग की रोशनी निकल रही थी। मैं कुल देवता से बात करने की कोशिश की थी कि आखिरकार किस तरह की रोशनी है, लेकिन ना तो कुल देवता प्रकट हुए थे और ना ही उन्होंने इस बारे में कुछ बताया था। तो कहीं ना कहीं बेटा, मुझे लगने लगा था कि कुछ बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं यही बताने के लिए तुम्हें परीलोक से पृथ्वीलोक पर आई हूँ। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो कहने लगी थी, लेकिन माँ, इतनी जल्दी काले रंग की रोशनी कैसे निकल सकती है? मुझे अच्छी तरह से याद है कुल देवता ने मेरे मन में ये बात डाल दी थी कि अगर राक्षस के अंदर से काले रंग की रोशनी निकलना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब साफ था कि राक्षस अब ज्यादा देर मूर्छित अवस्था में नहीं रहेगा। क्या या 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 क्या कह रही हो तारा बेटी? तुम अभी तो तुमने जिन्नातों के रंशज को जन्म भी नहीं दिया है, और अगर जिन्नातों के वंशज का जन्म होने से पहले पहले वो राक्षस मूर्छित अवस्था से बाहर आ गया तो वो तो सब कुछ खत्म कर देगा, पूरे परीलोक को बर्बाद करने के साथ साथ पृथ्वीलोक को भी नहीं छोड़ेगा। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, उसे कितने ही सारे वरदान प्राप्त हैं। इतना ही नहीं, पिछले जन्म का वो राजा विक्रम सिंह अपनी माँ के कितने ही सारे वरदानों से भरा पड़ा है। तभी तारा अचानक से अंदर ही अंदर कांप कर रह गई थी, क्योंकि राक्षस का तसव्वुर ही तारा को काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान कर दिया करता था। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी कि वो राक्षस किसी भी कीमत पर अपने होशो हवास में आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तारा अच्छी तरह से जानती थी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, और अमन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस राक्षस का मुकाबला कर पाए। अभी तारा को पिशाच के अंश से बचने के लिए अमन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। इतना ही नहीं, अमन का प्रतिरूप तक बदल गया था, वो एक पिशाच तक बन गया था, और अभी भी वो इतने दर्द में तारा परी के सामने लेटा हुआ था। तभी रानी माँ थोड़ा सा आगे बढ़ी थी और तारा के गाल को प्यार से छूते हुए बोली थी, बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि राक्षस की मूर्छित अवस्था से बाहर आने से पहले पहले तुम्हारा बच्चा जरूर जरूर आ जाएगा और वो राक्षस को खत्म कर देगा। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, तुम्हारे बच्चे के अंदर जो शक्ति आएगी वो पैदा होने के 15 दिन बाद आएगी। तुम्हें ये बात पता है ना? जैसे ही रानी परी ने तारा को ये बात याद दिलाई, तारा ने हाँ में अपना सर हिला दिया था। वो कहने लगी थी, हाँ रानी माँ, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। 15 दिन के तक वो एक नवजात शिशु रहेगा, इसके अंदर किसी तरह की कोई शक्तियाँ नहीं रहेगी और उस वक्त उसकी पहरेदारी सबसे ज्यादा होगी। उस वक्त उसे बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि उस पर काली शक्तियों की भी नज़र है। इतना ही नहीं, कितने ही सारे जिन्नातों के जो दुश्मन हैं वो इस बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं और मौका मिलते ही वो उसे छीनने की कोशिश करेंगे, उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। वो 15 दिन मुझे पृथ्वी पर ही काटने हैं और 15 दिन से 16 दिन में परीलोक में उसे राक्षस से लड़ने के लिए पहुंच जाऊंगी, तारा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा था और अपनी माँ से कहने लगी थी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा रानी, मैं उसे राक्षस की मूर्छित अवस्था से बाहर आने से पहले पहले परीलोक जरूर लौट कर आऊंगी। जैसे ही तारा परी ने अपनी माँ से ये कहा, उनके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें कम हो गई थी और वो तारा को ढेरों आशीर्वाद देती हुई वहां से गायब हो चुकी थी। रानी परी के गायब होते ही अचानक तारा का ध्यान बेड पर गया था। उसने देखा कि अमन के शरीर में धीरे धीरे मूवमेंट होने लगी थी और अमन को होश आने लगा था। जैसे ही तारा ने अमन की ओर देखा, वो तुरंत उसके पास चली गई थी और उसका हाथ पकड़कर बैठ गई थी। जैसे ही तारा ने अमन का हाथ पकड़ा, अचानक अमन ने अपनी आंखें खोल ली थी और अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगा था और अचानक उठकर एकदम से बैठ गया था और अपना सर पकड़कर अपने सर में धीरे धीरे से हाथ मारने लगा था। अमन को चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसे एक नया जीवन मिला हो। अमन ने जैसे ही तारा को देखा तो वो उसे कितनी ही देर तक देखता रहा था।